ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को कार्यनीतिक संबंधों में बदलने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 वर्ष के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने में पोलैंड की सहायता को कभी नहीं भूल सकते। श्री मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए ये सुधार समय की आवश्यकता है। श्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। श्री टस्क ने कहा कि समूचा विश्व भारत की सराहना करता है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदम्बिका पाल हैं। इसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने सदस्यों को प्रस्तावित कानून के विभिन्न संशोधनों के बारे में जानकारी दी। श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा में अल्पसंख्यक संगठनों को अधिक अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ को सौंपी गई संपत्तियों से पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। श्री पाल ने कहा कि समिति सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेगी और संसद के अगले सत्र तक एक बेहतर और व्यापक कानून लाएगी। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति, त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने भारतीय बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नहीं बनी है। विदेश मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश में यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा के जिलों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति त्रिपुरा में गोमती नदी पर स्थित डम्बूर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बनी है। मंत्रालय ने इसे गलत बताया और कहा कि गोमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करने वालों और अफ्रीका को उचित स्थान देने से इनकार करने वालों की निंदा करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी राजदूत आर रविन्द्र ने कहा कि सदस्यता की स्थायी श्रेणी में अफ्रीका को प्रतिनिधित्व से लगातार वंचित रखना परिषद की सामूहिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन में 11 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। श्री चौहान ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में इन महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रूपये का कोष स्वयं सहायता समूहों को भी जारी करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी। उनको हाल के दिनों में संगठन द्वारा उपेक्षित किया जा रहा था। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने डॉ मानस बंदोपाध्याय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नया प्रधानाचार्य बनाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।